તારીખ 28/9/1990 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 36
માર્ગદર્શન इस पत्र में दिया गया है। वैसे तो बहुत से पत्र में मार्गदर्शन अनेक विध प्रकार से दिया है, क्योंकि वहाँ प्रसंगोचित कहीं कहीं मार्गदर्शन देते हैं। यह पत्र जो है वो खंबात के सभी मनुष्यों को संबोधन करके लिखा गया है, और इसमें कोई प्रासंगिक बात नहीं है। मुमुक्षुओं को मुमुक्षुता होनी चाहिए, और ये मुमुक्षुता प्राप्त होने में क्या क्या चीज आवश्यक है, और मुमुक्षुता की प्राप्ति के बाद भी पदार्थ निर्णय स्वरूप निश्चय होने की आवश्यकता है, यहाँ तक का विषय इस पत्र में दिया गया है। पत्र का हिंदी में सूत्र जैसी कुछ बातें लिखी, निशंकता से निर्भयता उत्पन्न होती है। जो वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है, और वस्तु स्वपर पदार्थ ऐसी ही है ऐसा प्रतीत समेत ज्ञान होता है, तब पदार्थ के विषय में शंका नहीं रहती कि कब क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा, हम सुखी कैसे हो सकते हैं, हमारा दुख कब टलेगा, कोई भी शंका नहीं होती। खास करके अपने स्वरूप का ज्ञान होने से, तो निशंक ज्ञान होने से सर्वप्रथम आत्मा निर्भय हो जाती है। इसके पहले संसार की सभी आत्माएं भय से ग्रसित ही है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको भय नहीं हो। मृत्यु का भय तो सर्वसाधारण समूह को है, लेकिन संपत्ति के विषय में भी, देह के विषय में भी रोग का, अकस्मात का भय है, संपत्ति में भी लुटा जाने का, चुरा जाने का भय है। ऐसे अनेक प्रकार के जो भय हैं वो सर्व भय से अज्ञान दशा में जीव भयान्वित ही अपना जीवन व्यतीत करता है। इस मार्ग की सुंदर में सुंदर कोई देन हो, अच्छी से अच्छी कोई देन हो, और सर्वप्रथम कोई देन हो, तो यही देन है कि जीव निर्भय हो जाता है, भय का दुख उसका चला जाता है। कभी कभी ऐसी बातें चलती हैं तो ऐसा कहना होता है कि इस लाइन में आने वाले की शब्दकोश में से भय नाम का शब्द है वो नहीं रहता, दूसरे शब्द रहते हैं लेकिन भय नाम का शब्द है इसको ओमिट करना पड़ता है, कैंसल, भय नहीं। हमारे शब्दकोश में भय जैसा शब्द ही नहीं है, हमारे परिणाम में भय जैसे कुछ परिणाम नहीं है।
ज्ञानी के परिणाम में, ज्ञानी के शब्दकोश में नहीं, हाँ, हमारे शब्दकोश में
तो ज्ञानी ऐसे कहते हैं। निशंकता तो ज्ञानी को ही होती है, तो ज्ञानी निशंक होते हैं, निशंक होने पर वो निर्भय हो जाते हैं, किसी काम में नहीं रहता, विकाल अव्याबाध स्वरूप में, शाश्वत स्वरूप में वो निजानंद में क्लिक करते हैं, कोई भय नहीं होता।
मुमुक्षुता की शुरुआत होती है,
मुमुक्षुता में इसकी शुरुआत होती है, इसका प्रयास होता है और इसके कुछ असर आती है वो मुमुक्षुता में प्रारंभ होती है।
तो क्रम तो निशंकता से निर्भयता है,
निशंकता से निर्भयता, पहला अष्टगुण में जो अष्ट अवयव लिया है ना, अखंड सम्यक दर्शन का अष्ट अंग है, उसमें पहला ही निशंक है, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा मूल दृष्टि उपगमन, ऐसे सब है ना, वात्सल्य भावना, इसमें निशंकता सबसे पहले लिया है। निशंकता का फल क्या है? निर्भयता है, और जिसको निर्भयता होती है और उससे निशंकता प्राप्त, उसको ही निशंकता प्राप्त होती है, वरना निसंग रहना असंग रहना ये संग में रहने से भी भयंकर है। प्राय तो जब संसारी प्राणी संग में ही रहता है, कुटुंब के संग में, परिवार के संग में, समाज के संग में, अपने अपने मित्र मंडली के संग में, बिना संग तो कोई नहीं रहता है। एक महात्मा है, ज्ञानी ध्यानी जो होते हैं वो ही निसंग अवस्था में रहते हैं। इसके पहले अगर कोई निसंग अवस्था में रहता है तो उनकी जो मानसिक हालत है उसमें बहुत गड़बड़ी पैदा होती है, क्यों कि पूर्व कर्म के उद्देश्य अनेक प्रकार के चित्र विचित्र परिणाम आए बिना रहेगा नहीं, उन परिणामों का समाधान उनके पास नहीं होने से उनकी कल्पनाएं हैं और बढ़ जाएगी, और इसका जो मानसिक भूमिका है ये और विक्षिप्त हो जाएगी, और कईयों को तो पागलपन की दशा भी आ जाती है। इसलिए योग ध्यान निसंगता ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग ज्ञान आत्मज्ञान के पीछे किया जाता है, इसके पहले नहीं किया जाता, यही कारण है इसका।
मुख्य निसंग दशा में प्रयास करें अनुकूल नहीं थी,
वो क्रमभंग प्रयास है, तो एक प्रकार का एक प्रयास है, क्रमभंग प्रयास है, क्योंकि समाधान कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, पहले तो उनको सर्वांग समाधान रूप आत्मज्ञान आत्मस्वरूप का दर्शन होना आवश्यक है। वैसे तो चतुर्थ गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में और छठे गुण स्थान में विकल्प है, वहां तक सत्संग लिया है, सत्संग लिया है, यानी कि सत्संग को चाहते हैं तो संग करते हैं, लेकिन विवेक से संग करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि संग तो वो वृत्ति संग में तो जाती है, बाहर निकलती है, तो लेकिन विवेक कर देते हैं कि किसके संग में जाना किसके संग में नहीं जाना, ये विवेक करना पड़ता है।
कर्म पूर्ण होने की बात तो अभी मुख्य आती है,
कैसे आती
है, एकांत वास,
एकत्व में जाने का है, इसलिए एकांतवास उनको प्रिय होता है, और थोड़ा बहुत रहता भी है, अपनी प्रियता है इसलिए थोड़ा बहुत ही रहता है, लेकिन वो सर्वथा निसंग रह जावे परिस्थिति बन सकती नहीं। अगर हाथ से कोई करते हैं तो वो हट है, वो नुकसान करता है। जब से साधक दशा प्रकट होती है तब से एकांत बढ़ता जाता है और मुनिराज की अवस्था में बहुत एकांत
मार्गदर्शन वो भावना का है, एकांत वास्तविक है
वो भावना, एकांत के भावना रहती है और भावना के अनुकूल थोड़ी बहुत प्रवृत्ति भी एकांत की हो सकती है। वो कोई उसमें कोई दोष नहीं है कि वो एकांत में बिल्कुल नहीं रहे, ऐसा भी सिद्धांत है। एकांत में जितना भी उसका मन चाहे, जितनी रुचि काम करे, उतना एकांत में रहना कोई नुकसान का कारण नहीं है। लेकिन रुचि के अनुकूल, आत्मरुचि, स्वरूप की रुचि, स्वभाव की रुचि के अनुकूल जितना एकांत में रहा जाए, इतना अच्छा ही है, कोई बात नहीं है। लेकिन रुचि नहीं हुए, स्वभाव की रुचि नहीं हुए, और वैसे ही कोई शास्त्र संज्ञा से, लोक संज्ञा से एकांत में रहने का पता नहीं है, वो अच्छा वो नुकसान का कारण है।
को स्वभाव की रुचि तो होती है,
स्वभाव की रुचि हो गए और रुचि के अनुकूल रह रहे तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो ये बात साथ में है कि शास्त्र संज्ञा से या लोक संज्ञा से नहीं है,
रुचि को भी तपासने की जरूरत
होती है। सहज रूप से ही होगा, रुचि से होता है तो सहज रूप से होता है, बिना रुचि से होता है तो हठ करनी पड़ती है। इसी की सारी बात
संतुलन
में
रहना बहुत
महत्व, हर बात में संतुलन तो रहना ही चाहिए। ये बात तो थोड़ी हेडिंग में रखी है सूत्र जैसे, अब पत्र का प्रारंभ करते हैं कि प्रकृति के विस्तार से जीव के कर्म अनंत प्रकार की विचित्रता से प्रवर्तन करते हैं। ये प्रकृति स्वभाव का विस्तार है कि परमाणु में एक से एक प्रकार के परिणाम नहीं होते। जैसे हम हर विषय में लेते हैं, तो जैसे खाने में लेते तो कोई परमाणु मीठा रस वाला है तो कोई परमाणु खट्टा रस वाला है तो कोई परमाणु तीखा रस वाला है, लेकिन कोई परमाणु बिल्कुल स्वादहीन दिखता है, अपने गुजराती में मोड़ा रस वाला, फीका रस वाला कहते हैं। तो ये प्रकृति का विस्तार है, ऐसा क्यों? आवाज है तो किसी की आवाज होती है, किसी की तीनी है, चित्र विचित्र है कि एक से आवाज है क्या, वाजिंत्र में बजाओ हर एक वाजिंत्र नया नया सुर निकालेगा या एक वाजिंत्र में से नया नया सुर निकलेगा। ये परमाणु की जो अवस्था है इसकी विचित्रता प्रकृति स्वभाव से ही है। तो यहाँ कर्म प्रकृति की बात होती है कि कर्म का भी स्वाद जो है वो अनंत प्रकार का है, नानावणि दशनावणि से लेकर के, और काम क्रोध मोह मान मान माया लोग अनेक प्रकार के चित्र विचित्र परिणाम जो है प्रकृति के स्वभाव से ही है। इसलिए जीव को जो कर्म बंधन हुआ है, जो कर्म बंधन हुआ है इसका उदय होगा, उदय में भी अनेक प्रकार के चित्र विचित्र प्रकार के उदय आएंगे और तदनुसार जीव के परिणाम भी चित्र विचित्र होते रहेंगे। प्रकृति के विस्तार से जीव के कर्म अनंत प्रकार की विचित्रता से प्रवर्तन करते हैं, स्वयं स्वयं संचालित है ये प्रवर्तन है, वो स्वयं संचालित है, कोई इसका कर्ता होता नहीं है। और इसलिए दोष के प्रकार भी अनंत भाषित होते हैं। इस प्रकृति जिस प्रकृति का बंधन हुआ है उसका उदय आएगा, उदय में रस विपाक होते हैं, जैसे पकता है जो फल उसका स्वाद आता है, जैसा जैसा फल हो वैसा ही कर्म फल हुआ विपाक में, उसका स्वाद जैसा है वैसा ही चैतन्य में इसका फोटो पड़ता है और तदनुसार चैतन्य जीवित में परिणाम होते रहते हैं। ये परिणाम दूषित होते हैं क्योंकि वो कर्म के होने के अनुसरण करने वाले परिणाम होने से ये सभी परिणाम दूषित परिणाम है। तो कर्म के प्रकृति के प्रकार अनंत, इसके अनुसरण करने वाले दोष के प्रकार भी अनंत, ऐसा लिया। इसलिए दोष के प्रकार भी अनंत भाषित होते हैं। किसी को किसी प्रकार का दोष होता है, किस जीव को किसी प्रकार का दोष होता है, किस जीव को किसी प्रकार का दोष होता है, लेकिन सभी संसारी अपने अपने चित्र विचित्र कर्मोदय के साथ अनुसरण करते हुए चित्र विचित्र दोष को प्राप्त होते हैं अपने परिणाम।
बहुत सुंदर विज्ञान
प्रतिपादन की शैली देखो। जीव के परिणाम में चित्र विचित्र प्रकार के दोष क्यों? कि उनके बंधे हुए उदयमान कर्म को, पूर्व संचित उदयमान कर्म को, क्योंकि अभी चित्र विचित्र प्रकार के उदय है तो उनके अनुसरण जो भाव करेंगे वैसे ही प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाएंगे। परंतु सबसे बड़ा दोष यह है कि अनेक प्रकार के दोष है, अनंत प्रकार के दोष है, इसमें सबसे बड़ा दोष कौन सा है? सबसे बड़ा दोष यह है कि जिससे तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न ही न हो अथवा मुमुक्षुता ही उत्पन्न न हो। देखिए इस प्रकार का दोष कहीं शास्त्र में पढ़ा क्या? मुमुक्षुता उत्पन्न न हो, ये एक जीव का सबसे बड़ा दोष है। क्या बात लिया है कि संसारी जीव है, संसार में अपने अपने कर्मोदय के अनुसार वो परिणाम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दोष में वो समय गुजरता है या जीवन गुजारता है। तो अनेक प्रकार के दोष में कोई छोटा कोई मोटा ऐसा दोष की गिनती संसार में भी होती है, ये दोष तो बहुत बड़ा है, ऐसा दोष तो नहीं करना चाहिए आदमी, ये दोष ठीक है छोटा है चल सकता है, यहाँ एक अलग सा प्रकरण है कि इस परिभ्रमण करते हुए जीव को कभी मुमुक्षुता ही नहीं आई, ये इनका सबसे बड़ा दोष है। उसको मोक्ष अभिलाष नहीं हुई, उसने मोक्ष प्राप्त करना है ऐसा कभी ध्येय किया नहीं, संसार का थाक लगाने और छूटने का उन्होंने निश्चय नहीं किया कि मुझे छूटना ही है, जैसे कैसे भी मुझे छूटना है संसार से, ऐसा निश्चय नहीं किया, ऐसा दृढ़ निर्णय नहीं किया, इसलिए उनको मोक्षता की प्राप्ति नहीं हुई। ये सबसे बड़ा दोष है। अनेक प्रकार के अनंत प्रकार के दोष में इस प्रकार के परिणाम नहीं हुए और इस प्रकार के परिणाम के अभाव में जो जितने भी परिणाम हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा दोष है।
इसमें पूर्व कर्म का देने का सवाल
फिर नहीं रहा,
पूर्व कर्म का उद्देश्य जैसे पर मैंने विज्ञान दिया, तो इस विज्ञान को अगर इस प्रकार से लें कि पूर्व कर्म का उदय ऐसा है कि मोक्ष तो उत्पन्न नहीं होती,
नहीं ऐसा नहीं, ये मोक्षता जो उत्पन्न होती है उसमें किसी भी कर्म उदय के साथ संबंध इसलिए नहीं है कि सर्व कर्म से मुक्त होने का ये भाव है।
क्या
ये मुक्त होने का भाव है? तो मुक्त होने का भाव हो, कौन सी ऐसी प्रकृति है दिखावा? अगर आपने कुरान में पढ़ा हो तो बताइए कि ऐसी कौन सी प्रकृति है कि जिसके उदय में जीव मुक्त होने का परिणाम करे?
कोई
नहीं। क्या
सटीक ये जो कर्म के उदय का जो कहीं पर विजय बंद रह गई हो सब साफ हो जाए
यहाँ से ये उदय का कनेक्शन जो है वो टूटता है प्रारंभ होता है डिसकनेक्शन प्रारंभ होता है यहाँ से
वरना तो कभी होता
ही है
वरना तो कभी होता ही
बाकी तो सब परिणाम कर्म के उदय के अनुकूल शास्त्र पढ़ने बैठे
कर्म का उदय
कर्म का उदय भगवान की पूजा भक्ति किया कर्म का उदय नहीं किया त्याग कर दिया कर्म का उदय ग्रहण कर लिया आहार किया तो कर्म का उदय में उपवास किया तो कर्म का दीक्षा ली तो कर्म का उदय सब कर्म के उदय
श्रवण वांछन जो कुछ हो
सब कर्म के उदय में
जाता है असुंदर बात
है विचिक्षणता कितनी है बस कितनी विचिक्षणता है इसका जो स्वभाव है वो अंतरंग है ऐसे तो जीव का द्रव गुण पर्याय ये इनके अंग है पदार्थ के ये द्रव गुण पर्याय इनके अंग है इसमें अंतरंग कौन है और बहिरंग कौन है तो ये पर्याय का जो सारा विभाग है वो बहिरंग है और द्रव्य गुण का अभेद स्वभाव है वो अंतरंग है इसका तो स्वभाव में से उत्पन्न हुई भावना वो अंतरंग से उत्पन्न हुई भावना है तो स्वभाव तो बंध मोक्ष से रहित है उसको मोक्ष स्वभाव कहने में आता है वास्तव में तो बंध मोक्ष से रहित है लेकिन मोक्ष सदृश स्वभाव होने से मोक्ष के जो पर्याय है उस सदृश स्वभाव होने से उसको मोक्ष स्वभाव भी कहते हैं और मोक्ष से रहित भी उसको कहते हैं दोनों विशेषण उसको लागू हो सकता है और होता भी तो ये अंतर है वो स्वभाव है लेकिन यहाँ एक दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि स्वभाव का तो पता नहीं है स्वभाव में से कैसे बात है तो ज्ञानी ये कहते हैं कि स्वभाव व्यक्त नहीं है लेकिन अव्यक्त रूप से तो स्वभाव है देखिए आपको सुख क्यों चाहिए और सदा सदा सर्वदा सुख चाहिए ऐसा क्यों सर्वथा पूरा सुख चाहिए ऐसा क्यों सुख स्वभाव है तो अव्यक्त रूप से ये सुख की भावना है मैं मरना नहीं चाहता इसका क्या कारण शाश्वत स्वभाव है अमर स्वभाव है अगर अमर स्वभाव है इसलिए नहीं चाहता तो ये एक वो अनजाने में ये प्रकार जैसे चलता है वैसे अनजाने में ये प्रकार चल गया स्वभाव के अनभिज्ञता अवश्य है वहां स्वभाव को प्रकट रूप से नहीं जाना लेकिन अव्यक्त स्वभाव की अव्यक्त रुचि होती है उसमें मुमुक्षुता प्रकट हो जाती है ऐसा नहीं हुआ ये सबसे बड़ा दोष है ऐसा क्या मुमुक्षुता ये सबसे बड़ा दोष है और भव्यता के परिपाक में ये परिणाम आया तो आठ कर्म का उदय का संग नहीं किया इस वक्त भव्यता का संग किया परिणाम अरे आपको ये आपको कर्म का उदय का संग किया तो कैसे किया बताओ नहीं यहां से ये अनुदय वास्तविक रूप से चालू होता है जो आगे जाकर के सम्यक दर्शन में परिणमित होगा और फिर जितना भी मोक्ष मार्ग के परिणाम है वो अनुदय परिणाम का स्वरूप है उदय परिणाम के स्वरूप नहीं है फिर आगम भाषा से उसको उपशम कहो क्षयोपशम कहो शायद परिणाम कहो अध्यात्म भाषा से उसे अनुभव कहो उसे इसका संवेदन कहो उसे आत्मलाभ कहो ऐसे उनके हजारों नाम
ये जो रहस्य भी खुला है इसको कृष्ण बोल मैंने माता जी ने कहा चैतन्य से उठी
चैतन्य में से राग से और द्वेष से उत्पन्न हुई भावना नहीं, लेकिन अंतर में से चैतन्य में से उठी हुई भावना,
ये अनुदय परिणाम हुआ।
तो चैतन्य में वो नहीं कहा है, तो स्वभाव स्वभाव तो पारिणामिक भाव रूप होता है
जी।
पारिणामिक भाव को किसी कर्म से संबंध नहीं, न उदय से, न उपशम से, न क्षोपम से, न क्षय से, किसी से भी नहीं। इसलिए चैतन्य में से उत्पन्न हुई भावना वो कतई निष्फल नहीं जाती, हो ही नहीं सकती। चौदह ब्रह्मांड को फिरना पड़े, भावना को फिरना नहीं पड़ेगा। चौदह ब्रह्मांड में तो बड़े बड़े पर्वत है, ये बड़े पर्वत को भी तोड़ती है ये भावना। पर्वत पर्वत तो बड़े कठोर होते हैं दृष्टांत रूप से देखें तो, पर भावना तो भावना के रूप में बड़ी कोमल होती है, लेकिन कोमलता का विजय होता है, कठोरता का नहीं, कठोरता टूट जाती है। ऐसी एक अलौकिक पारलौकिक चीज है
जिसको ऊपर ऊपर की भावना कहते हैं, वो राग द्वेष को अनुसरण करती है, इसे उदय परिणाम हो
गया।
अंतर में शब्दों की नहीं होना विषय है, अंतर कथन चित्त भी है,
कथन चित्त में स्वभाव है, चैतन्य माथी उत्पन्न थे, स्वभाव माथी उत्पन्न थे, पर क्या तर्क करे थे लोगों, लेकिन एवं शब्द नो प्रयोग ज्ञानी नहीं करता है, वो कारण तो लोग तर्क कर रहे थे स्वभाव क्या प्रकट थे, स्वभाव क्या जाएगा से केवल के स्वभाव माथे थे, तो क्या अंतर माथे थे,
એટલે શબ્દ નો વિષય નથી પણ ભાવ નો વિષય છે। જે રીતે ઘી નો ટેસ્ટ કોઈને પૂછે તો શબ્દ નો વિષય નથી,
ભાવ નો વિષય,
ભાવ નો વિષય છે।
એટલે મેં કહ્યું જે રહસ્યભૂત વાત થી આ ઉઘાડ થઈ
તો ચલતે ચલતે વિચાર આયા, કભી સોચા નહીં, કલ્પ નહીં આયા કભી વિચાર, પ્રશ્ન તો ખડા હો ગયા મુજે ભી, ઉત્તર ભી ખડા હો ગયા, तो मुझे ही खड़ा हुआ था विचार करते करते, ये कैसा मुमुक्षुताएं उत्पन्न होती है, तो मोक्ष की भावना में कौन सा कर्म लगाएंगे, एक प्रश्न हो गया। किस कर्म का उदय में मोक्ष की भावना हो सकती है, विचार करते हैं तो कोई कर्म नजर नहीं आते। आठ कर्म में से ऐसे कोई कर्म नजर नहीं आते कि जिस कर्म के उदय में जाकर के ऐसी भावना हो गए, ये तो बंधन की भावना है। कर्म के उदय में कोई भावना है तो बंधन की भावना होती है, मोक्ष की होती ही नहीं, ये तो बिल्कुल प्रतिपक्ष है, बंधन और मोक्ष तो बिल्कुल प्रतिपक्ष, फिर कैसे हुई। तो
आठ का अगर 148 से उसको बुरा भाग करके उम्मीद खोजे तो वहां पर भी नहीं मिलता,
कोई नहीं, वो तो 148 आठ का तो संतान है,
संतान
मूल तो आठ है, इनकी सब संतान है, इसमें तो कोई दिखती नहीं है, तो फिर उपयोग वहां चला है। अकर्म कहाँ है, कर्म नहीं है तो स्वभाव अकर्म है, पारिणामिक भाव अकर्म है, बस यहाँ से होती है।
कोई आज का दिन बहुत शुभ है
तो वहां इधर स्वभाव क्या आया कि मुमुक्षु की भूमिका में भव्यत्व का पता चल जाता है, बड़े ही स्वभाव का पता नहीं चले, लेकिन उनको मैं भव्य हूं और मैं भव्य हूं कि नहीं या मैं अभव्य हूंगा, तो ऐसी शंका जो है वो निर्मल हो जाती है, यहाँ पर ऐसी शंका रहती नहीं, निर्मल हो जाती
है।
गुरुदेव ऐसे कहते हैं बहुत शुरू के उधर प्रवचन मात्मार्थी के बारे में जो प्रवचन चले शुरू में जो प्रवचन चले गुरुदेव प्रारंभ में स्वंगत स्थिर हुए उन दिनों में, उन सालों में कुछ सालों तक चले हैं, तो जो विषय अपन खास करके चर्चा करते हैं मोक्षता का आत्मार्थी का वही विषय बहुत चलता था उन दिनों में। उस वक्त ऐसे ऐसे बात चली है आत्मधर्म में पढ़ी है, वो भी विस्मृत नहीं की है आपको, लेकिन आत्मार्थी को ये ऐसे जो पारमार्थिक बातें हैं ऐसी सुनते ही मोक्ष का भड़कार अंदर में से आता है। आत्मा थीने अंदर माथे मोक्ष ना भणकारा वागे
ऐसे समय में कौन सा तत्व लागू करता हूँ? सात तत्व में ऐसे समय कौन सा तत्व लागू करता हूँ?
जीव तत्व। ये जीव तत्व है। ये जीव तत्व में जाता है,
इससे वो निश्चित हो जाता है। इससे ये निश्चित होता है कि मुक्ता में जब वो अंधे परिणाम में आता है, मुक्ता जो उत्पन्न होती है वो अंधे परिणाम होती है, वो जीव नियम से अंधे परिणाम में
उसका वहां प्रारंभ हो गया।
तो
बीज अंकुर हो गया ना, तो बीज बो दिया भगत, हमने बीज बो दिया, फिर अंकुर उठेगा मोक्ष मार्ग में।
जिसको एक वक्त मुक्त आई उसका संसार परिवर्तन नाश हो गया। ये भी
भावना आपके मुझको क्या वहां से पूर्णता का लक्ष्य से वास्तविक शुरुआत हुई। मोक्ष नाश जिसको कह रहे हैं, पूर्णता के लक्ष्य से वास्तविक शुरुआत हो गई ना, तो ये पूर्ण होना है वहां। उसमें बहुत का जो कोई बढ़िया से बढ़िया एक पॉइंट है तो वो है कि फिर वो पूर्ण पर्याय होने के पहले किसी पर्याय में संतुष्ट होने वाला नहीं है। जो दर्शन वो बढ़ने का मुद्दा है त्रिलिंगी को भी, ये शुरू से ही साफ हो जाता है, प्रारंभ से ही उस कांटे को तो निकाल देते हैं। पूर्णता के लक्ष्य वाले को परिपूर्ण सिद्ध पद की पर्याय नहीं हुई उसके पहले किसी भी एक पर्याय में संतुष्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं। बात खत्म। तो पर्याय बुद्धि इसकी टलेगी, इसकी गारंटी यहां से होगी, इस शुरुआत से होगी। पूर्णता के लक्ष्य की शुरुआत से ये गारंटी मिलती है कि इसकी पर्याय बुद्धि नहीं रहेगी। क्यों? तो परिपूर्ण पर्याय हुए के पहले उसको कोई पर्याय में संतुष्ट पर्याय बुद्धि होने का सवाल ही नहीं होगा। कई लोग इस सूत्र के सामने प्रश्न करते हैं, दुर्गा को एक प्रश्न हुआ था और इन दिनों में तो ये चर्चा करते हैं तो प्रश्न उठता ही है, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है कुछ और ढंग की हो गई है। गुरुदेव ने प्रश्न किया था तो वैसे ही इतना उतना ही किया था। इस आदमी आप कहते हैं कि पूर्णता के लक्ष्य से वास्तविक शुरुआत होती है, तो ये पूर्णता पूर्ण स्वभाव की बात है ना, क्योंकि स्वभाव का आश्रय करने में तो दृढ़ दृष्टि होती है और पर्याय का आश्रय करने में पर्याय दृष्टि होती है। इसलिए पर्याय की बात तो हम हमारी पढ़ाई भी ऐसी है कि पर्याय की बात हम लेंगे नहीं। तो गुरुदेव को ऐसा मैंने उत्तर ही पूछ लिया कि पूर्णता के लक्ष्य में पूर्ण स्वभाव की बात होगी साहब, तो कह नहीं यहाँ पूर्ण स्वभाव की बात नहीं है, यहाँ पूर्ण पर्याय की बात है। तो फिर वो पढ़ाई हुई है उसको असमाधान हो जाएगा कि ये गुरुदेव पर्याय की बात फिर करते हैं, स्वभाव की बात करो तो हमारे अभिप्राय के अनुकूल होती है, तो गुरु को भी हमारे अभिप्राय के अनुकूल हमें बिठाना है। गुरु को गुरु के स्थान में नहीं रखना, ये बात होगी। वो कैसे देखिए, यहां से पर्याय दृष्टि पर्याय का निदान है ये कि हमें पूर्ण शुद्धता चाहिए। ये
निदान है संकल्प
है कि हमें ये चाहिए, निदान में तो चाहिए, तो हमें पूर्ण शुद्धि चाहिए, लेकिन पर्याय दृष्टि वो खत्म करती है। पर्याय आश्रित होने पर भी पर्याय दृष्टि को वो खत्म करती है, पहले से ही पर्याय दृष्टि को कमजोर कर देती है और उसकी पर्याय दृष्टि चली जाएगी। क्यों? कि दूसरी दूसरी जगह का दर्शन जो है वो स्थूल है, एक समय के पर्याय में अहमपना एकत्व हो जाता है, वो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, और ये एकत्व होने से संतुष्टपना जाने अनजाने में हुए बिना रहेगा नहीं। तो प्रारंभ में फर्स्ट डोज जिस दवाई का लिया, पहला जो डोज ले लिया, ये पर्याय बुद्धि को कमजोर कर देता है पूर्ण पर्याय का, लेकिन सारे पर्याय बुद्धि को साधक के किसी भी पर्याय में पर्याय बुद्धि होने
और साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है,
कितना व्यवस्थित बात है। यहां से प्रारंभ होता है, वास्तविक शुरुआत वहां से यहां से होती है।
एक पक्ष से जो मुख स्थान में आया वो जातांतर हो, एक पक्ष से जो मुख स्थान में आया वो जातांतर हो,
वैसे कि किस परिणाम जो जात्यांतर कहते हैं, तो जात्यांतर विषय कृपालु देव ने इस बात को, इस शब्द का प्रयोग किया है कि सुनील दूषण पूर्वक जो ज्ञान मतिश्रुत है वो तो पहले ही मतिश्रुत ही था, पीछे भी मतिश्रुत रहा, लेकिन वो जात्यांतर हो गया। तो जो पहले वाला मतिश्रुत था वो भाव हेतु रूप होता था, अब जात्यांतर होने से भाव निवृत्त रूप होने लगा है, ऐसा प्रयोग किया है। इसके सिवा कहीं और बात नहीं है। तो ज्ञान का जात्यांतर होने की बात चली है। अब ज्ञान का जात्यांतर पड़ा राजमार्ग से है तो समझे दर्शन किया है, हमने कुछ सूक्ष्म चर्चाएं गुरुदेव के साथ की थी, तो उस विषय में गुरुदेव ने यह पाबंदी रखी थी कि बोलना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, ऐसा करके वो बात कही थी कि जब सम्यक संगूर होता है तब जाते हैं तब ज्ञान। जिस ज्ञान में स्वभाव का भाव भाषण होता है और भाव भाषण होते ही जो ज्ञान अभिमुख होता है वहां से वो जात्यांतर हो जाता है, लेकिन कहना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए, बात खोल करके चर्चा चली थी, जब चर्चा चली थी तब तो उनका प्रश्न हमने उठाया था कि साहब उसको जात्यांतर कह रहे कि नहीं कह रहे, तो होता तो है लेकिन कहना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए कि लोग इसमें अपने आप में विभ्रम में आ जाते हैं, क्योंकि आनंद तो वहां हुआ नहीं, आनंद तो गुरुदेव तो ये भरी सभा में ये विषय खोलते ही नहीं थे, प्रश्न आते थे तो भी नहीं देते थे उत्तर, उसका छोड़ देते थे, ये प्रश्न को छोड़ दो, हमने प्रयोग किया है, हमने उल्टा करके ये प्रश्न रखा तो गुरुदेव बोला तो फिर ये कहिए प्रश्न कौन लाए बीच में, तो ये प्रश्न है क्या, हम थोड़ा भाषा और बात उल्टा करके पूछा हस्ते नास्ते से, तो कहते वो क्यों बात है बोला नहीं दोस्त को, ऐसा करते भ्रमित हो जाते। सम्यक दर्शन में भ्रम होने का नहीं होने का यही कारण है कि निर्विकल्प आनंद होता है, सभी प्रकार के शुद्धात्मा और स्वभाव के विकल्प भी अस्त हो जाते हैं, नए प्रमाण के विकल्प भी अस्त हो जाते हैं, और ये निर्विकल्प दशा असंख्य समय का शुद्ध उपयोग और आनंद का वेदन, सिद्ध पद के जाति का आनंद का वेदन वहां अनुभूत होता है, तो वहां भ्रम होने का सवाल नहीं, जिसको होता है उसको भ्रम होने का सवाल नहीं, नहीं हुए और कष्ट की मंदता की शांति में भ्रम हो जावे इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये तो बहुत सूक्ष्म परिणाम है और कहीं साधक जो इस हद तक पहुँचते उसका विचार भी नहीं करते, उनका उपयोग भी इतना नहीं चलता है उस काल में, क्योंकि फिर तो इतनी लगनी और धुन स्वभाव की धुन चालू हो जाती है कि इस धुन में परिणाम का विचार करने की फिर अवकाश नहीं रहता है। ये तो बाद में जब सामने परिस्थिति प्रश्न के रूप में आती है तो समझाने के लिए विचार करके जवाब देने का होता है। उस काल में तो धुन ऐसी चलती है कि क्या हुआ अवस्था में, क्या नहीं हुआ, कौन देखता है, तो देखने की किसी दरकार है। धुन को भी धुन नहीं देखती है फिर दूसरे को क्यों देखे, जो धुन अपने आप को भी नहीं देखती है
धुन उतर जाए।
और ये निर्णय फिरने को भावभाषा को देखने जावे तो भी धुन उतर जावे, ये तो धुन में ये
गजब विषय
धुन रे दुनिया अपनी धुन, जिस धुन में ना है पाप और पुण्य कुछ नहीं है, ऐसे धुन नहीं है, इस धुन में अनुभव तक पहुंच जाता है। तो अनुभव की भी दरकार नहीं है, अनुभव हुआ नहीं हुआ मत देख। तो मैंने जी ने कहा कि नहीं कहा कि धुन में से बात निकली, निर्णय हुआ वो देख मत देख में नहीं बात है, अनुभव हुआ कि नहीं हुआ वो मत देख, सब अलग मेला ने विचार ये यही सिद्धि नहीं हुआ
बना सुना
था।